एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी आत्मकथा की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो किसी रॉक लेजेंड की कहानी से कहीं ज्यादा है।
हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रूस स्प्रिंगस्टीन की 2016 में आई किताब बॉर्न टू रन की।
बिल्कुल, और ये सिर्फ मतलब स्टेज की लाइट्स और गिटार सोलोस की कहानी नहीं है, है ना? ये उस इंसान के अंदर झांकने की कोशिश है, उसके संघर्ष, उसकी कला।
एकदम सही। और ब्रूस स्प्रिंगस्टीन, जिन्हें दुनिया द बॉस के नाम से जानती है, वो सिर्फ एक गायक या गीतकार नहीं है, वो एक तरह से अमेरिकी जिंदगी के, खासकर वर्किंग क्लास के, कथावाचक बन गए हैं।
न्यू जर्सी से निकलकर 5 दशकों तक ये कमाल की यात्रा है। वो एक कवि भी हैं। समाज पर उनकी टिप्पणियां काफी तीखी होती हैं कई बार।
हाँ, और इसीलिए ये किताब आज भी मायने रखती है। ये सिर्फ शोहरत पाने की कहानी नहीं है, ये तो परिवार, विरासत, मेंटल हेल्थ से जूझने की हिम्मत और संगीत कैसे जिंदगी बदल सकता है, इस पर एक बहुत ही सच्ची, बहुत रॉ किस्म की नज़र है।
आत्म खोज की यात्रा, जैसा आपने कहा।
और मजेदार बात यह है कि किताब उनके खुद के बनाए मिथक, मतलब वो भागने के लिए जन्मा वाला आइडिया, उसको भी एक तरह से चैलेंज करती है। वो असल में भाग रहे थे शायद खुद को समझने की तरफ, अपनी जड़ों की तरफ।
अच्छा, ये एक दिलचस्प एंगल है। तो इसमें रचनात्मकता, अपनी सच्चाई पर टिके रहना और हाँ, अपने अंदर के डर का सामना करना, ये सब भी है।
बिल्कुल, ये सब बातें इस किताब को खास बनाती हैं।
तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। उनकी फॉर्मेटिव ईयर्स, उनका बचपन कैसा था, वो माहौल जिसने इस बॉस को शक्ल दी।
कहानी शुरू होती है 1950 के दशक में, फ्री होल्ड न्यू जर्सी। एक आम सा वर्किंग क्लास परिवार था, आयरिश इतालवी जड़ें थीं। घर का माहौल कह सकते हैं थोड़ा तनाव वाला रहता था।
तनाव वाला किस तरह का?
वजह थे उनके माता पिता।
बिल्कुल
विपरीत स्वभाव के। पिता डगलस ज्यादातर चुप रहते थे, डिप्रेशन से जूझते थे, काम भी पक्का नहीं था उनका। और माँ एडेल, वो एकदम उम्मीद की किरण थी, परिवार को आर्थिक रूप से और इमोशनली दोनों तरह से वही संभालती थी।
पिता का जिक्र किताब में एक बहुत अहम धागा है। डगलस स्प्रिंगस्टीन की वो चुप्पी और बेटे की उनकी स्वीकृति पाने की वो तड़प।
हाँ, और ये सिर्फ एक पारिवारिक मुद्दा नहीं रहा, ये उनकी कला का, उनके गानों का एक सेंट्रल थीम बन गया। वो चुप्पी, उसमें सिर्फ खामोशी नहीं थी, उसमें शायद अवसाद का बोझ था, नौकरी की अनिश्चितता की फ्रस्ट्रेशन थी।
पिता जैसे रसोई की मेज के राजा थे, जिनकी खामोशी भी हुक्म जैसी थी, और ब्रूस हमेशा उनकी नजरों में ठीक होने की कोशिश करते रहे।
बिल्कुल, ये रिश्ता उनके बहुत से गानों में झलकता है। वो अपने पिता जैसे लोगों के अनकहे दर्द को आवाज देने की कोशिश करते नजर आते हैं।
लेकिन फिर एक रोशनी आई, संगीत। वो 7 साल की उम्र में एड सलिवन शो पर एल्विस प्रेस्ली को देखना, किताब में से बिग बैंग मोमेंट कहा गया, ऐसा क्या था उसमें?
वो सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं थी शायद, एल्विस में उन्हें वो देखा जो उनकी अपनी दुनिया में नहीं था। पावर, आजादी, खुद को पूरी तरह एक्सप्रेस करने का तरीका, जो उनके पिता की चुप्पी वाली दुनिया के एकदम उलट था।
और माँ ने इस चिंगारी को हवा दी।
हाँ, माँ एडेल में ही ये देखा और उन्हें पहला गिटार ला कर दिया। वो गिटार सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट नहीं था, वो उनकी ढाल बन गया, उनकी आवाज।
कैथोलिक माहौल में परवरिश का भी जिक्र है, एक तरफ अनुशासन, दूसरी तरफ अपराध बोध।
हाँ, वो कैथोलिक गिल्ट का असर भी रहा, स्कूल में भी वो कुछ फिट नहीं बैठते थे, अलग थलग महसूस करते थे।
तो संगीत ही सहारा बना।
बिल्कुल, उनके शुरुआती बैंड्स जैसे द कैस्टील्स, स्टील मिल, वो उनके सीखने की जगह थे। हजारों घंटे प्रैक्टिस, ये दिखाता है कि द बॉस कोई रातों रात स्टार नहीं बने, बहुत मेहनत की है।
इसी दौरान वियतनाम वॉर का ड्राफ्ट, कॉलेज छोड़ना और फिर एस्बरी पार्क का म्यूजिक सीन उनका विश्वविद्यालय बन गया।
सही कहा, वहीं उन्होंने असल में सीखा।
और फिर आया बड़ा ब्रेक, 1972, जॉन हैमंड, कोलंबिया रिकॉर्ड्स। लेकिन शुरुआती एल्बम चले नहीं।
हाँ, ग्रीटिंग्स फ्रॉम एस्बरी पार्क एनजे और द वाइल्ड, द इनोसेंट एंड द ई स्ट्रीट शफल, क्रिटिक्स को पसंद आए पर बिके नहीं, दबाव बढ़ रहा था लेबल से।
यहीं से शुरू हुई बॉर्न टू रन एल्बम की वो कहानी, 14 महीने स्टूडियो में, ये तो पागलपन लगता है।
था भी, वो उनके लिए करो या मरो वाला प्रोजेक्ट था। उनके दिमाग में एक आवाज थी, एक वॉल ऑफ साउंड जिसे वो रिकॉर्ड पर उतारना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने खुद को और बैंड को मतलब पूरी तरह झोंक दिया,
फिजिकल और इमोशनल एग्जॉशन की हद तक।
हाँ, लेकिन वो जुनून, वो मेहनत रंग लाई। एल्बम ने न सिर्फ उनका करियर बचाया बल्कि उन्हें स्टार बना दिया, पर साथ ही वो टैग भी मिला, रॉक एंड रोल का भविष्य। उसका बोझ भी कम नहीं था।
इसी वक्त ई स्ट्रीट बैंड भी बना। किताब पढ़कर ऐसा लगता है ये सिर्फ म्यूजिशियंस का ग्रुप नहीं था, ये एक भाईचारा था, एक गैंग।
थाई और क्लारेंस द बिग मैन क्लेमेंस के साथ उनकी जो केमिस्ट्री थी वो तो लेजेंडरी है। वो सिर्फ सैक्सोफोन नहीं बजाते थे, वो कहानी का हिस्सा थे।
हाँ, वो रिश्ता कमाल का था। लेकिन फिर सफलता के साथ मुश्किलें भी आईं। मैनेजर माइक एपल के साथ वो कानूनी लड़ाई,
बहुत कड़वी लड़ाई थी। कई साल तक वो रिकॉर्डिंग ही नहीं कर पाए। ये किसी भी आर्टिस्ट के लिए बहुत बहुत दर्दनाक होता है।
सोच सकती हूँ, रचनात्मक रूप से एकदम बंद जाना।
पर शायद शायद उसी खालीपन ने, उसी संघर्ष ने उन्हें एक नई दिशा दी। वो पॉप स्टारडम की चमक से हटकर कुछ और कहना चाहते थे, और नतीजा था डार्कनेस ऑन द एज ऑफ टाउन।
1978 का वो एल्बम, ज्यादा यथार्थवादी, ज्यादा मैच्योर।
हाँ, उनके लेखन में एक नई गहराई आई। फिर द रिवर आया 1980 में,
और फिर नेब्रास्का 1982 में। घर पर एक 4-ट्रैक रिकॉर्डर पर बनाया गया एकदम अकेला उदास सा एल्बम। ये तो उस वक्त कमर्शियली बहुत बड़ा रिस्क रहा होगा।
बहुत बड़ा, लेकिन इसने साबित किया कि स्प्रिंगस्टीन सिर्फ हिट मशीन नहीं है, वो एक आर्टिस्ट हैं, अपनी शर्तों पर चलने वाले। कहानी कहने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं।
और फिर आया 1984 बॉर्न इन द यूएसए। ये तो एक अलग ही लेवल का फिनोमेनन था।
हाँ, ग्लोबल सुपरस्टारडम, दुनिया भर में पहचान। पर विडंबना देखिए,
वही टाइटल ट्रैक को लोग देशभक्ति का गाना समझ बैठे,
जबकि वो असल में वियतनाम वॉर वेटरन्स के दर्द, उनकी उपेक्षा पर एक प्रोटेस्ट सॉन्ग था। ये दिखाता है कि बेतहाशा शोहरत कैसे आपकी बात का मतलब ही बदल सकती है। और शायद इसी वजह से उनका अकेलापन और वो इम्पोस्टर सिंड्रोम वाला एहसास और बढ़ गया।
इतनी बड़ी सक्सेस के बाद 1989 में ई स्ट्रीट बैंड को भंग कर देना, ये चौंकाने वाला कदम था। क्यों किया उन्होंने ऐसा?
शायद वो एक ठहराव महसूस कर रहे थे, एक नई राह तलाश रहे थे, आर्टिस्टिकली भी, पर्सनली भी।
और इसी दौरान पैटी सियाल्फा उनकी जिंदगी में ज्यादा अहम भूमिका में आई।
हाँ, पैटी वो बैंड में थी, खुद एक बेहतरीन सिंगर सॉन्गराइटर, और फिर उनकी जीवन साथी बनी। स्प्रिंगस्टीन खुद मानते हैं कि पैटी ने उन्हें उनके डिप्रेशन के सबसे बुरे दौर में संभाला, वो एक एंकर की तरह रही।
पिता बनने का अनुभव वो भी उनके लिए बहुत मायने रखता था। वो कहते हैं कि वो अपने पिता से अलग बनना चाहते थे।
हाँ, वो उस पैटर्न को तोड़ना चाहते थे। बाद में ई स्ट्रीट बैंड दोबारा जुड़ा, जो फैंस के लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन फिर क्लेरेंस क्लेमेंस और डैनी फेडरिची जैसे अहम साथियों का जाना, उसका दुख भी बहुत गहरा था।
उनका ब्रॉडवे शो स्प्रिंगस्टीन ऑन ब्रॉडवे, वो तो जैसे पूरी जिंदगी का सार था, बहुत इंटीमेट।
हाँ, बहुत पावरफुल था वो शो। और उनके हाल के एल्बम जैसे डेविल्स एंड डस्ट या वेस्टर्न स्टार्स, उनमें अब उम्र, गुजर जाना, विरासत, इन सब पर ज्यादा फोकस दिखता है।
एक आदमी जो घर से, पिता से भागता है और आखिर में पाता है कि जिनसे भाग रहा था वही उसके वजूद की, उसकी कला की जड़ें हैं।
बिल्कुल सही कहा आपने, यही इस किताब का सार है।
चलिए अब थोड़ा उनके मूल विचारों, उनके कोर फिलॉसफी की बात करते हैं। क्या चीज उन्हें चलाती है, उनकी सोच की जड़ें कहाँ हैं?
देखिए, उनकी जड़ें बहुत मजबूती से वर्किंग क्लास वैल्यूज में है, और कैथोलिक परवरिश का असर भी है, भले ही बाद में उन्होंने चर्च पर सवाल उठाए।
हाँ, काम की गरिमा, समुदाय की ताकत, अमेरिकी सपने में यकीन और उसकी खामियों का एहसास भी, ये सब उनके गानों में बार बार आता है।
बिल्कुल, और वो खुद को सिर्फ एक एंटरटेनर नहीं मानते, वो एक सत्यवक्ता की तरह है, अमेरिकी अनुभव की इतिहासकार। उन्हें संगीत की हीलिंग पावर पर, लोगों को जोड़ने की ताकत पर बहुत भरोसा है।
उनके पिता के संघर्ष और खुद के डिप्रेशन का उनकी सोच पर क्या असर रहा?
मुझे लगता है इसने उन्हें बहुत ज्यादा सहानुभूति दी है, दूसरों के दर्द को समझने की क्षमता, और अपनी कमजोरियों के बारे में खुलकर बात करने का साहस। ये शायद उन्हीं मुश्किल अनुभवों से आया है।
प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी उनके लिए बहुत जरूरी लगती है, कला में भी, जिंदगी में भी।
हाँ, वो हमेशा आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी को कमर्शियल सक्सेस से ऊपर रखते आए हैं, और वो कोशिश करते हैं कि अपने परिवार से मिली वो चुप्पी, वो इमोशनल दूरी, उस पैटर्न को तोड़ सकें।
तो उनकी मुख्य प्रेरणाएं क्या रहीं, क्या चीज उन्हें पुश करती रही?
कई चीजें। एक तो जैसा हमने कहा, अपने परिवार के इमोशनल पैटर्न को समझना, खासकर पिता के साथ जो रिश्ता था उससे ऊपर उठना। संगीत उनके लिए भागने का रास्ता भी था और समझने का जरिया भी।
और दूसरा, शायद वंचितों को आवाज देना।
हाँ बिल्कुल, वर्किंग क्लास की आवाज बनना। तीसरा, कनेक्शन की तलाश
ऑडियंस से, बैंड से, परिवार से और खुद अपने आप से, और चौथा अपने अनुभवों को, खासकर दर्द को, कला में बदलना, उनसे कुछ मीनिंग निकालना।
मुश्किलों से वो भागते नहीं बल्कि उनका सामना करते हैं, उन्हें रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करते हैं।
हाँ, उनका वो कंस्ट्रक्टिव वॉलोइंग वाला आइडिया, मतलब मुश्किल भावनाओं में डूबो, उन्हें महसूस करो और फिर उनसे कुछ सार्थक रचो। थेरेपी और सेल्फ एनालिसिस को उन्होंने अपनाया, जो उनके पिता की पीढ़ी के लिए शायद सोचना भी मुश्किल होता।
किताब में कई टर्निंग पॉइंट्स हैं। क्या हम ऐसे तीन सबसे अहम मोड़ों की बात कर सकते हैं जिन्होंने ब्रूस स्प्रिंगस्टीन को वो बनाया जो वो हैं?
जरूर। पहला तो बिना किसी शक के वो 7 साल की उम्र का पल है, 1956, एड सुलिवन शो, एल्विस प्रेस्ली।
वो बिग बैंग मोमेंट जिसने दिखाया कि संगीत क्या कर सकता है, पावर, फ्रीडम, इसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी, एक बिल्कुल नया रास्ता दिखाया।
हाँ, दूसरा बड़ा मोड़ मैं कहूंगा 1974-75 का वो दौर, बॉर्न टू रन एल्बम का बनना।
वो सिर्फ एक एल्बम नहीं था, वो उनके वजूद की लड़ाई थी। उस प्रेशर ने, उस जुनून ने उन्हें क्या सिखाया?
उसने उन्हें परफेक्शन की कीमत और उसका इनाम दोनों सिखाया। वो उनके कमिटमेंट का, उनकी मेहनत का सिंबल बन गया। इसने उन्हें स्टारडम से दिया, पर साथ ही शोहरत की जो मुश्किलें होती हैं उसका पहला एहसास भी कराया। ये उनके एक आर्टिस्ट के तौर पर बनने की प्रक्रिया का बहुत जरूरी हिस्सा था।
और तीसरा अहम मोड़, ये शायद कोई एक घटना नहीं है।
नहीं, ये एक फैसला है। तीसरा मोड़ है उनका अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज का सामना करने का फैसला। ये ओवरनाइट नहीं हुआ, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया रही है।
थेरेपी लेना, डिप्रेशन पर खुलकर बात करना, उस जमाने के रॉकस्टार के लिए ये बहुत बहुत हिम्मत की बात थी।
बिल्कुल, अपने पिता की चुप्पी के एकदम उलट उन्होंने अपनी लड़ाई को छुपाया नहीं, और इसका असर सिर्फ उनकी पर्सनल लाइफ पर नहीं पड़ा,
उनकी कला पर भी पड़ा होगा।
हाँ, इसने उनके रिश्तों को सुधारा, उनमें गहरी सहानुभूति आई और उनकी कला और ज्यादा ईमानदार और ज्यादा गहरी हो गई। और साथ ही इस मुद्दे पे खुलकर बोलकर उन्होंने, मतलब एक तरह से कलंक मिटाने में मदद की, लाखों लोगों को हिम्मत दी। ये उनकी लेगेसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है।
तो इस पूरी कहानी से, इस जीवन से हम क्या सीख सकते हैं? एक आम इंसान के लिए क्या सबक है?
पहला तो शायद यही कि अपने अतीत का सामना करना जरूरी है।
हाँ, आप भाग नहीं सकते। स्प्रिंगस्टीन की कहानी यही दिखाती है, परिवार का इतिहास, बचपन के घाव, इन्हें समझना, स्वीकार करना पड़ता है, तभी आप उनसे आगे बढ़ सकते हैं।
और दूसरा सबक, कमजोरी में भी ताकत होती है। मदद मांगना ये हिम्मत की निशानी है।
बिल्कुल, उनकी मेंटल हेल्थ पर जो ईमानदारी है वो यही सिखाती है। थेरेपी लेना, दवा लेना, इसमें कोई शर्म नहीं है, ये खुद की देखभाल करने का एक तरीका है।
तीसरा सबक है कम्युनिटी का महत्व, उनका वो फलसफा, अपना ई स्ट्रीट बैंड ढूंढना। स्टीन की कहानी बताती है कि टैलेंट तो बस शुरुआत है, असली काम तो हजारों घंटों की प्रैक्टिस और लगन से होता है।
और आखिरी सबक जो मुझे बहुत पावरफुल लगा, अपनी कहानी खुद गढ़ने की ताकत,
ये बहुत अहम है। देखिए, उन्होंने अपनी जिंदगी के दर्द को, मुश्किलों को लिया और उसे संगीत और इस किताब के जरिए एक ऐसी कहानी में बदल दिया जो न सिर्फ उनके लिए मुक्तिदायक थी बल्कि लाखों लोगों से जुड़ी। हम सब अपनी कहानी के नैरेटर बन सकते हैं, संघर्ष को ताकत में बदल सकते हैं।
ये कहानी है तो बहुत स्पेसिफिक, न्यू जर्सी, पिता, रॉक स्टारडम, लेकिन इसकी थीम बहुत यूनिवर्सल है।
बिल्कुल, उम्मीद, संघर्ष, प्यार, नुकसान, अर्थ की तलाश, खुद को स्वीकार करना, ये सब हम सब की कहानी है किसी न किसी रूप में।
तो इस पूरी चर्चा के आखिर में अगर तीन मुख्य बातें हमें याद रखनी हो तो पहली, एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि।
भावनात्मक अंतर्दृष्टि ये है कि पारिवारिक घाव, जैसे पिता की भावनात्मक दूरी या उनकी बीमारी, ये सब ठीक हो सकते हैं, मतलब आप उन्हें बदल सकते हैं। भेद्यता, थेरेपी, कोशिश, इनसे न सिर्फ हीलिंग होती है बल्कि आप उस दर्द को कला और सहानुभूति में बदल सकते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले नेगेटिव पैटर्न को तोड़ने की एक गहरी उम्मीद है।
ठीक है, दूसरी, एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि।
बौद्धिक अंतर्दृष्टि ये है कि सच्ची ऑथेंटिक कला के लिए सिर्फ टैलेंट काफी नहीं, आपको तकनीकी महारत चाहिए, वो क्राफ्ट, वो कड़ी मेहनत, और साथ ही चाहिए गहरी भावनात्मक ईमानदारी, अपनी कमजोरियों, अपने डरों का सामना करने की हिम्मत। कला सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये खुद को और दुनिया को समझने का एक टूल है। स्प्रिंगस्टीन का बॉर्न टू रन वाला मिथक, वो सिर्फ भागना नहीं था, वो खुद को परिभाषित करने का, अपनी कहानी खुद लिखने का एक तरीका था।
ये दिलचस्प है। और तीसरी, एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि।
सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि ये है कि असली आज़ादी भागने में नहीं है। असली विकास तब होता है जब हम अपने सबसे गहरे डरों और घावों का सामना करते हैं, उनसे बचकर नहीं बल्कि उनके साथ रहकर। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम न सिर्फ खुद बेहतर बनते हैं बल्कि अपने संघर्षों को दूसरों से जुड़ने का, उनकी मदद करने का एक जरिया बना सकते हैं। सामना करना ही आगे बढ़ने का रास्ता है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए 71 फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।